सभी लोग हमेशा की तरह आज भी इस बात पर विचार करने के लिए एक साथ बैठे हैं कि हमारे जीवन में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा शेष जीवन और बेहतर हो सके। बहुत पहले मैंने एक घटना पढ़ी थी। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर करने अपना सामान लेकर के चढ़ा। उसके पास अपनी खुद की एक टिकट थी और सामान की एक पोटली थी जिसको कि उसने अपने सर पर उठा रखा था। और वो जब ट्रेन में घुसा तो चूंकि उसकी टिकट पर उसका अपना नंबर था तो उसकी सीट तो उसको खाली मिल गई। वो अपनी सीट पे जाकर के बैठ गया, लेकिन उसने अपनी पोटली नीचे नहीं रखी, सिर पे ही रखे रहा। लोगों ने कहा कि तुम अपनी पोटली नीचे रख लो। उसने कहा नहीं ठीक है। तो शायद लोगों को लगा कि थोड़ा बहुत हो सकता है हो गया हो, रहने दो कुछ मत कहो। लेकिन जब ट्रेन चलने लगी, बहुत देर हो गई, लोगों से नहीं रहा गया, तो लोगों ने फिर कहा कि भैया ट्रेन में तो बहुत जगह है और तुम सीट पर बैठे हो, नीचे अपनी पोटली रख सकते हो। उसने कहा तुम लोग नाहक परेशान मत हो और मेरा खर्चा मत बढ़वाओ। क्या मतलब? तुम लोग नाहक मेरी परेशानी देख करके परेशान मत हो और मेरा खर्चा मत बढ़वाओ। लोगों ने कहा कि इसमें क्या खर्चे की बात है। तो उसने कहा सुनो, मेरे पास एक ही टिकट है, मैंने इसका कोई टिकट तो लिया नहीं। अब जब मैंने उसका टिकट नहीं लिया तो मैं ट्रेन में रख कैसे सकता हूं? देखना मजा देखना। अब लोगों को लॉजिक तो लॉजिक था कि ठीक है हमने टिकट नहीं लिया है इसलिए हम ट्रेन में नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप खुद ट्रेन में बैठे हो, सिर पर रखे हैं, तो बोझा तो ट्रेन में ज्यों कहते हो। ये एक बहुत छोटी सी घटना है, सीधी सीधी समझ में नहीं आती, लेकिन हम अगर गौर से देखें तो हम भी यही कर रहे हैं। हम सारी दुनिया का बोझा अपने सिर पर रखकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। बोझा किस तरह का? मैं जैसे कि सारे संसार को चलाता हूं, संसार को नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली को तो मैं ही चला रहा हूं। ये जो कर्तापने का बोझा है वो कमती नहीं है, वो भी हम इसी तरह से अपने सिर पर लिए हुए हैं कि मैं करता हूं, इस दुनिया को मैं चला रहा हूं या कि अपनी फैमिली को मैं चला रहा हूं। ये जो अहम का भाव है, ये जो कर्तापने का भाव है, क्या हमारे अपने जीवन को कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक ठीक ना बनने दे रहा हूं? कहीं हमारे जीवन में मुश्किल तो नहीं पैदा कर रहे? हमें ये देख लेना चाहिए। दो तरह के लोग इस संसार में जीते हैं, हम उनमें से कौन से प्रकार के हैं ये जरा सा हम देख लें। एक वे हैं जो इगो सेंटर्ड होकर के जीते हैं, जो ये मान के जीते हैं कि संसार का केंद्र मैं हूं और सारा संसार मेरी परिधि पर है। हालांकि ऐसा स्पष्ट कहने में नहीं आता, लेकिन हमारी क्रियाओं से तो मालूम पड़ता है। जब हम दूसरे का उपयोग करते हैं तब तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। हम चाहते हैं कि सारा संसार और सारी चीजें हमारे सुख के लिए हो। इसके बारे में तो यही है कि हम सेंटर में हैं और सारा संसार परिधि पर है, वो हमारे लिए है, हमारी सुख सुविधाओं के लिए है। सारा संसार, सारे संसार की चीजें और सारे संसार के लोग मेरे सुख जुटाने के लिए हैं। अगर ऐसा मेरा सोच है तो यही तो ईगो सेंटर्ड होना है। दूसरे तरह का सोच और है कि मैं इस संसार का एक अंग हूं, मेरी अपनी एग्जिस्टेंस कितनी है, जैसे कि समुद्र में बूंद की एग्जिस्टेंस है उसकी भी इंडिविजुअलिटी। ऐसा नहीं है कि बूंद की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो, लेकिन बूंद अपने आप को ऐसा अहंकार नहीं करती है कि मैं इंडिविजुअल और अलग हूं। अगर वो ऐसा अहंकार करे तो फिर वो आइसलैंड की तरह समुद्र में पड़ी रह सकती है, लेकिन समुद्र नहीं बन सकती। बूंद अपना अस्तित्व खोकर के समुद्र में ऐसी मिक्सअप हो जाती है कि एक एक बूंद में पूरा समुद्र है। ये दूसरे ढंग का सोच है, मैं इस संसार में हूं और सबके लिए हूं, और मैं इस संसार में हूं और सब मेरे लिए हैं। बस दोनों तरह के सोच हैं। इनमें से अधिकांश लोगों का सोच, हम सब का सोच यही रहता है कि सारी चीजें, जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी चीजों का उपयोग करता है, मानिएगा वो इसी तरह की भावना वाला है। हम देख लें गौर से, पहनना एक जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन हमने अगर जोड़ के 200 जोड़ी रखे हैं तो इसके मायने क्या है? वही मायने है। किसी और को मैं वो कैसे दे सकता हूं? मेरे लिए है ये 200 जोड़ी का मालिक मैं हूं, और मेरा बस चले तो मैं 2000 जोड़ी, और मेरा बस चले तो मैं तो सारी दुनिया के कपड़ों का मालिक हो जाऊं और दूसरे लोगों को ये कह करके दूं कि पहनो पहनो मेरा दिया हुआ पहनो। देख लो, आप गौर से देखो भीतर झांक करके, ऐसे तो समझ में नहीं आता। कहीं अंतरंग में हमारे इसी तरह का भाव बैठा हुआ रहता है, सारी चीजों पर मेरी मालकियत हो। और इस तरह के भाव से हमें क्या लॉस हुआ है ये और देख लेना चाहिए। हम चाहते तो संसार में एक बूंद की तरह या वृक्ष पर एक पत्ते की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन हमने अपने जीवन को सबके केंद्र में रखकर, सबको अपनी परिधि में रखकर, सबका हिसाब किताब बनाने की फिक्र में अपने जीवन को किस तरह तकलीफ में डाला है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। हम देखें कि कैसे हम जब इको सेंटर्ड हो जाते हैं तो कैसे अपने लिए खुद तकलीफ पैदा कर देते हैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति ऑफिस में, इतना प्यारा व्यक्ति, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये व्यक्ति अहंकारी होगा, बड़ा विनयवान, जिससे बोले तो प्यार से बोले और सबको इनवाइट करता हो, कभी आइएगा मेरे घर आइएगा। एक बार एक व्यक्ति के मन में आया कि चल के देखें इसके घर, कितने प्यारे लोग होंगे इसके घर में, जब ये इतनी बढ़िया बात करता है और इतने अच्छे से सबसे पेश आता है तो इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी। पहुंचा वो घर पे तो जैसे ही दरवाजे खुले तो जनाब का चेहरा बिल्कुल शक्त, चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ही नहीं, गायब। जबकि इतने गर्म जोशी से मिलता था वो ऑफिस में कि बस देखते ही बनता था, और यहां यहां तो उसने ये तक नहीं कहा कि आओ, बस दरवाजा खोल दिया और ऐसे खड़ा है, सपाट चेहरा, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं, कोई वार्म हार्टेड वेलकम ही नहीं है। उसने कहा खैर ठीक है, आप घर पे आए, हो सकता तबीयत ही भी ठीक नहीं। पूछा कैसी है तबीयत? सब बढ़िया है, आ जाओ आ जाओ, भीतर आ जाओ। ऐसे जैसे कि कोई बहुत मुश्किल में हो, वो जैसे अपन किसी को नहीं कहते कि चुपचाप आ जाओ, चुपचाप इधर भीतर, ऐसे उसने कहा। ऐसा हो जाता है, रिसेप्टिविटी गायब हो जाती है जहां ईगो आता है, एग्रेसिवनेस वहां आ जाती है जहां ईगो आता है। ये दो चीजें अपन देख रहे हैं और हम लोगों के भीतर यही हुआ है, हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ है। जहां हम ईगो सेंटर हुए हैं वहां हमारी रिसेप्टिविटी खत्म हो गई है। अब हम किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहते, अब हम सब कुछ हैं ये मान करके संतुष्ट हैं। और ऐसा ही है उसके साथ भी, यही स्थिति भीतर ले जाता है, बिठा देता है। उतने में वो देखता है कि उसका नौकर आ रहा है, नौकर के सामने तो और ज्यादा बिल्कुल शक्त हो गया वो। अब थोड़ी देर में बेटा आया, बेटे को भी उसने हिराकत की नजर से देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तो ये सोच रहा था कि ये अपने बेटे से तो कम से कम प्यार करेगा, ये अपने नौकर से तो करता ही होगा, जब यहां ऑफिस में इतना बढ़िया सबसे बात करता है तो नौकर भी इसका अच्छे से वहां रहता होगा। लेकिन यहां तो कुछ और ही तमाशा है। और फिर उसने देखा कि जीवन साथी ने भीतर से आवाज दी, तब भी इसने ढंग से नहीं बोला, बड़े कठोर शब्दों में जवाब दिया। अब तो ये बहुत मुश्किल में पड़ा। इसने कहा चलना चाहिए, लगता है अपन गड़बड़ आ गए। वापिस लौटने लगा तो दरवाजे पर बाहर थोड़ी दूर 10 कदम आकर के, 10 कदम बाहर तक आकर के वो भेजने आया। तो इसको थोड़ी जान में जान आई कि लगता तो है कि कुछ है अभी बाकी। तो उसने 10 कदम आने के बाद कहा कि सुनो, तुम ऑफिस वाले जितने प्यारे व्यक्ति हो उतने घर में तो नहीं लगे, मुझे क्षमा करना। उसने कहा सुनो, ये घर का मामला है और अपन 10 कदम आगे आ गए, इसलिए मैं कह सकता हूं घर में तो ऐसा ही रहना पड़ता है। क्यों? घर में अगर मैं मुस्कुरा दूं ना तो वो जो नौकर है मुझे मुस्कुराता देखकर कहेगा कि मालिक बहुत दिन से पगार नहीं बढ़ाई, पगार बढ़ा दो। इसलिए जरा सावधान रहना पड़ता। और अगर बेटी के सामने अगर मुस्कुरा दिया तो पॉकेट में हाथ डालेगा, जेब खर्च मांगेगा वो, इसलिए बहुत संभल के रहना पड़ता हूं। जीवन साथी के सामने मुस्कुरा दिया तब तो बहुत मुश्किल है, कौन सी चीज मांग बैठेंगी, कहां नहीं जा सकता, इसलिए जरा संभल के रहना पड़ता। देख रहे हैं आप? यानी हम अपने जीवन को खुद अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं, अपनी क्वालिटीज को, और एग्रेसिव हो रहे हैं सिर्फ काहे के लिए, अपने अहम को विस्तार देने के लिए। सब मेरे हिसाब से चले, मेरा नौकर, मेरा बेटा, मेरी जीवन साथी, सब मेरे हिसाब से, पूरे फैमिली का मैं सेंटर हूं। तब फिर मेरा अपना बिहेवियर कैसा मैंने बना लिया है? एग्रेसिव, जिसमें सिर्फ कांटे कांटे हैं, जिसमें कहीं कोई फूल नहीं है, जिसमें कहीं कोई ग्राहकता नहीं है, सिर्फ आक्रामक रुख है। हम अपने जीवन में झांक के देखें, जहां जहां हम आक्रामक हैं वहां वहां हमारा मानिएगा अहंकार है, और जहां जहां हम ग्राहक हैं, जहां जहां हम रिसेप्टिव हैं, वहां मानिएगा कि हां हम कहीं अपने जीवन में विनयवान हैं, जो कि हमारी अपनी क्वालिटी है। और यदि हम अपनी ये क्वालिटी ज्यादा डेवलप करें, रिसेप्टिविटी हमारी बढ़ती चली जाए तो हमारी गुणवत्ता भी बढ़ती चली जाएगी। आज हम बहुत अच्छे तो होना चाहते हैं, बहुत गुणवान तो होना चाहते हैं, लेकिन हमारे गुणों को जो हमारे भीतर हैं और हमारे भीतर आ सकते हैं उनको ढकने वाली चीज अगर हम अपने भीतर बनाए रखेंगे, जिसे हम अहंकार कहते हैं, तब तो फिर संभव ही नहीं है कि हमारे जीवन में हम वो सब चीजें जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हों हम ला ही नहीं सकते। हम अपने जीवन में गुणों को तब ला सकते हैं जबकि हम विनयवान हो। लो प्रेशर एरिया बनता है तब रेनफॉल होता है। वर्षा कहां होती है? जहां लो प्रेशर एरिया बनता है। गर्मी बढ़ती है, हवाएं ऊपर उठना शुरू होती हैं, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, साइंस का यही कहना हो, फिर बाद में रेनफॉल होता है। और आज क्यों ये मुश्किल है हमारे हमारे साथ? ना वहां पानी है और ना भीतर गीलापन है, भीतर भी भीगापन नहीं है, भीतर भी कहीं कोई कहना चाहिए तरावट नहीं है, भीतर भी वही घटाटोप मची हुई है जो कि बाहर है। जब तक प्रेशर लो ना हो, अहंकार हमारे प्रेशर को बढ़ाता है, हमारे दबाव को बढ़ाता है, विनय हमारे प्रेशर को कम करती है। बहुत सीधा सा हिसाब, जितनी गुणवत्ता हमारे भीतर बढ़ती है वो सब अहम शून्य होने पर बढ़ती है। जितना जितना हम अहम शून्य होंगे, जितना अहम का दबाव हमारे भीतर कम होगा, उतनी गुणवत्ता बढ़ेगी, उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। और आज ये चीज कम होती जा रही, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जरा जरा सी चीजों में, दोनों भौतिक उपलब्धियों में भी अहंकार बढ़ रहा है, इधर धार्मिक उपलब्धियों को लेकर के भी अहंकार बढ़ ही रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि हमारी स्थिति धीरे धीरे अहम शून्य होते चली जानी चाहिए। कौन व्यक्ति है जो कि अहंकार को पसंद करे? कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कोई उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे के सामने हम एग्रेसिव नहीं होंगे तो हम तो बहुत छोटे हो जाएंगे, हम अपना टेरर क्रिएट करके नहीं रखेंगे तो हम तो बहुत छोटे हो जाएंगे। यानी हम अपने भीतर खुद डिसक्वालिटीज बनाते चले जाएं, इस वजह से कि हमारा अपना सिक्का चले। भैया ऐसा तो किसी का भी नहीं चला, अहंकार तो भरत चक्रवर्ती का भी नहीं चला। वृषभ गिरी पर नाम लिखने गए थे, उसके पहले सैकड़ों और हजारों वहां लिखे थे, तब दूसरे का मिटा के अपना लिखना पड़ा था। ये बात सब जानते हैं, लेकिन जीवन में क्यों नहीं आ पाती ये बात? क्यों हम अपना नाम हर जगह लिखवाना चाहते हैं, अपना फोटो हर जगह लगवाना चाहते हैं? एक एक कालम पर अगर हमने एक जरा सा डोनेशन दिया है तो उस कालम पर हमारा नाम, जबकि हमारे सिवाय हमारा नाम कोई नहीं जानता। हम ही आएंगे और उस कालम पर अपना नाम पढ़कर के गदगद हो लेंगे, बाकी तो किसी को मालूम नहीं कि फलाने चंद जी कौन से होंगे। कोई ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं एक ही नाम के, लेकिन इसके बाद भी ये बात जाती नहीं है। दूसरे का अहंकार हमें पसंद नहीं है और हम खुद अहम शून्य होना नहीं चाहते, दूसरे को अहम शून्य बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे के घर पहुंचा, उसने दरवाजा खोला और कहा कि आइए, जबकि ये सोच के गया था कि मेरा तो वहां बहुत स्वागत होगा, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। और जब कुछ भी नहीं कहा तो अहंकार को तो बहुत चोट लगती है अगर कुछ नहीं कहा जाए तो। हां तो उसने कहा कि आप मुझे पहचाने? हां पहचान गया मैं, फिर भी ऐसा कह दिया? नहीं नहीं मुझे लगता है कि आप मुझे ठीक से नहीं पहचाने, हम फलाने के। हां ठीक है, अब तो और मुश्किल होगी, इतना हमने उनका तब नाम ले लिया और फिर भी आप कह रहे हैं ठीक है। और जब फिर ये कहा कि शायद आप उनको भी ठीक से नहीं जानते, जानता हूं, आप एक कुर्सी ले लीजिएगा और क्या, ऐसा कह दिया, तब तो और बौखला गए वो। मैंने इतनी बातें कहने के बाद वो कह रहा है कि तो ठीक है एक कुर्सी ले लीजिएगा। तब इनको बहुत इंसल्ट फील हुई और उन्होंने कहा कि सुनो आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। थोड़े गुस्से में आके कहा कि मैं आपके घर आया हूं और आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। तो मालूम उस जिस व्यक्ति ने घर में उसके आया था उसने कहा यू कैन टेक टू चेयर्स प्लीज सिट डाउन, दो ले लो लेकिन सिर पे मत बैठो, हमारे घर आए हो, घर में तो हम ही बड़े हैं, आप कितने ही बड़े रहे हो। क्या मतलब? यही है हम सबके साथ भी, ये तो एक उदाहरण है। व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि वो औरों की अपेक्षा बड़ा हो, हम सबके साथ भी यही है। दूसरा हमसे बड़ा हो ये हमें सहन नहीं होता, और हम दूसरे से बड़े हों ये दूसरे को सहन नहीं होता। बताइए कोऑर्डिनेशन बनेगा नहीं बनेगा, और ये हो रहा है सब दूर, यही हो रहा। हम दूसरे को अपने से छोटा करने में लगे हैं, अपने को बड़ा करने में नहीं लगे हैं। हर आदमी अगर दूसरे को छोटा करने में लगा हो तो बताइए कोई बड़ा हो सकेगा? जो आपसे झुककर मिला होगा मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा, लेकिन बहुत सीधी सीधी सी चीज होने पर भी जल्दी से हमारे समझ में आती नहीं है। दुर्योधन के समझ में भी नहीं आई थी। पहुंच गए थे दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जबकि ये तय हो गया था कि अब तो लड़ाई होगी, अब कोई चांसेस नहीं है। संधि वार्ता के लिए भी श्री कृष्ण आकर के वापस लौट गए थे, मंजूर नहीं किया था, तब लड़ाई तय है और अब अपने अपने लोगों को ढूंढो, अपने पक्ष में कौन लड़ेगा। और श्री कृष्ण ने भी घोषणा की थी कि मैं भी जो मदद चाहेगा उसे मदद दूंगा। और पहुंचे दुर्योधन तो कहां जाकर के बैठे थे? सिर के पास। अहंकार हमेशा सिर पे ही चढ़कर के बोलता है, दूसरे के भी और अपने भी। रिसेप्टिव तो हो ही नहीं सकता, अहंकार में रिसेप्टिविटी हमारी गायब होती, गुणवत्ता हमारी धीरे धीरे नष्ट होती। श्रेष्ठ नहीं होने के बाद हमें अपने श्रेष्ठ होने का भ्रम हो जाता है, और जिस व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठता का भ्रम हो जाए उससे ज्यादा अश्रेष्ठ कोई नहीं होता, और उसके श्रेष्ठ होने के सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले से ही मान के बैठे हुए हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, अब श्रेष्ठ होने के कोई चांसेस ही नहीं। दुर्योधन सिर के पास बैठे हैं और उनके 2-5 मिनट के बाद, यह समझिएगा जस्ट उनके आने के बाद कौन पहुंचा था? अर्जुन पहुंचे थे। वो कहां जाके बैठे थे? सबको मालूम, चरणों में जाके बैठे थे। ये बहुत बड़ा प्रतीक है, भले ही ये घटना ठीक ऐसी घटित हुई हो ना न हुई हो, हमारे जीवन में रोज घटित होती है, रोज। वो तो किसी एक दिन घटित हुई होगी, हमारे जीवन में रोज घटित होती है। कभी किसी से भी हमें कुछ सीखना हो, जबकि सारी दुनिया से हम सीख सकते हैं, एक छोटे से बच्चे भी से सीख सकते हैं, एक छोटे से पौधे से सीख सकते हैं, उगते हुए सूरज से सीख सकते हैं, दुनिया में सीखना अगर चाहें तो सबसे सीख सकते हैं, लेकिन झुक करके ही सीखा जा सकता है, किसी के चरणों में बैठ के सीखा जा सकता है। आज वो चीज हमारे जीवन से गायब हो गई। हम चाहते हैं बहुत अच्छा होना, लेकिन अच्छे लोगों के संपर्क में हम अच्छे होंगे और अच्छे लोगों के चरणों में बैठ के हम अच्छे होंगे, हम अपने माता पिता से भी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उनके चरणों में बैठ करके वो हमसे नहीं होगा। हम अपने नौकर से भी कुछ सीख सकते हैं, अरे उसके चरणों में बैठ करके, उसको अपने चरणों में बिठा करके मजबूर करेंगे कुछ सिखाने के लिए, अगर उसको कुछ आता होगा तो। ऐसा ही हम सबके साथ हमेशा से हो रहा है, हमें इस पे जरूर विचार करना चाहिए। और कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, हम सब एक विचार कर रहे हैं कि कहीं हमारे भीतर अगर इस तरह की चीज आ गई है, आ तो गई है, उसे हमें निकाल देना चाहिए। हमें अपने भीतर थोड़े से झुकने की आदत डालनी चाहिए, और झुकने की आदत हम डाल सकते हैं कब? जबकि हमें ये महसूस होने लगे कि हमारे अपने जीने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। हम हमेशा थैंक्सफुल रहें उन सब के लिए जिनका कि हाथ हमारे जीने में है। ये जो सांस हम ले रहे हैं उस सांस के लेने में भी बहुत लोगों का हाथ है। मुझे हमेशा मालूम लगता है जिन्होंने ये बनाया होगा, जिसके नीचे बैठकर हम शांति से धर्म ध्यान कर रहे हैं, कभी उनको धन्यवाद देने का, कभी उनके उपकार मानने का हमारे मन में भाव आया? कभी नहीं आता। हमें सुबह से शाम तक कितने लोग जीने में मदद करते हैं, कितना उनका उपकार है, कभी इसका ध्यान ही नहीं आता। हमने किस पर कितने उपकार किए, पंख उड़ाने के लिए छोटी सी मुड़ेर पर दौड़ता था और कुछ नहीं होता था मुझे, मेरी छाती में बिल्कुल धक धक नहीं होती थी, होती थी धक धक वहां नीचे बैठी हुई मां जो दाना बीनती रहती थी चावल, ए भैया नीचे उतर आओ, मानते नहीं हो तो हमारी कहीं गिर जाओगे। कभी याद आता है? कभी याद नहीं आता। अब तो हमारे पास हमारे अपने जो हमने जोड़ के रखे हैं और जिनके बीच में मैं अपने अहम से केंद्र बन के बैठा हूं, वही सब दिखाई देता है। मेरे माता पिता भी मेरे अहंकार के केंद्र की परिधि में हैं। देख लो, गौर से देख लो, सब सारा संसार, जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से मैंने यही सोचना शुरू किया है, सब मेरे अनुसार चलो। अब आपके दिन लद गए, वहां बैठ जाओ कोने में, जो खाने दे दूं खा लो, पहनने दे दूं पहन लो, साहब हो गया बेटा, साहब हो गया बेटा, अब बेटा नहीं रहा। बहुत मुश्किल है। क्या इस तरह हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे? लगता है आपको? मुझे तो कई बार बहुत निराशा होने लगती कि मैं क्या कहूं, किस तरह अपन बैठ करके इन बातों पर विचार करें, क्या होगा इस तरह विचार करने से, क्योंकि जीवन में तो वो सारी चीजें इतनी अधिक आ चुकी हैं जिनसे कि हमने खुद अपने जीवन को पतित कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने जीवन का उत्थान करेंगे, कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे? अगर यही हमारी स्थिति रही तो धीरे धीरे ये तो हमारे गिरने के लक्षण है। लेकिन क्या करें, फिर भी एक आशा की किरण भीतर कभी कभी डोल जाती है कि शायद हो सकता है कि हम अपने को इंप्रूव कर सकें, अपना उत्थान कर सकें, इस अहंकार से बच सकें, थैंक्सफुल हो सकें, दूसरे के उपकार के प्रति कृतज्ञ हो सकें, हमारे भीतर थोड़ी सी विनय जो कि हमारी अपनी क्वालिटी है वो आ सके। बच्चन ने लिखा कि मैंने तो बड़े की परिभाषा वही बना ली है कि जिसके पास पहुंच करके मैं कभी अपने को छोटा महसूस नहीं करता। आज तो जिसके पास पहुंचो ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरा कद छोटा हो गया, जिससे मिलो उसके सामने पहुंच करके ऐसा लगता है जैसे मेरा कद छोटा हो गया, तब फिर लगता है कि कोई बड़ा नहीं है। बड़े तो सिर्फ भगवान है, जिनके पास पहुंच करके कद बड़ा हो जाता है, ये ललक भीतर आ जाती है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि मेरे जैसे हो सकते हो तुम, मेरे मातहत रहो, ये नहीं कहता। यहां तो सारी दुनिया जिसके पास पहुंचो वो कहती है कि मेरे मातहत होके रहो, मेरे जैसे तुम हो कैसे सकते हो। जब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के बीच में बहुत स्टूडियस था, उसने अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना के रखी थी और उस लाइब्रेरी में से उसको एक बहुत ऊंची जगह पर रखी हुई किताब जानी चाहिए थी, तो वो नहीं पा पा रहा था, तो उसका एक जो ऊंचा सैनिक था उसने कहा कि आई एम ओनली हायर इन योर आर्मी, मैं हूं सिर्फ ऊंचा तुम्हारी आर्मी में, मैं मदद करूं? तो मदद तो दूर की बात, नेपोलियन ने कहा कि यू आर ओनली लॉन्गर इन माई आर्मी नॉट हायर, तुम सिर्फ लंबे हो ये कहो, ऊंचे नहीं, ऊंचा तो मैं। इस मानसिकता से क्या मालूम पड़ता है, हम सबके साथ भी यही मानसिकता जुड़ गई है। जब भी कोई हमारे निकट आता है, क्या वो हमारे निकट आके ये फील कर पाता है कि मैं भी बड़ा हो गया? हम व्यक्ति के साथ इस तरह व्यवहार करें कि उसका कद छोटा ना हो, बल्कि उसका सम्मान और अधिक बढ़ने लगे, अहंकार बढ़ने लगे, ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा नेचर हम अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज अगर हमारे भीतर आ जाए, कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर आ जाए, यदि हम दूसरों के दिन भर के उपकारों को ध्यान में लाना शुरू कर दें। वैसे तो जीवन में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा हो सकता, लेकिन एक ही नियम अपने जीवन में शामिल कर लें, और बहुत से नियम आपने लिए होंगे। आज एक छोटा सा नियम कि सुबह उठेंगे और याद करेंगे कि सूरज ने मुझे रोशनी दी है, कितना उपकार, धन्यवाद। क्या कभी धन्यवाद देने के लिए ऐसा मन बनेगा? सुबह से आंख खुल गई, धन्यवाद। रास्ते से चले जा रहे हैं और वहां लग गई है पत्थर की ठोकर और फिर भी दे रहे हैं धन्यवाद, ऐसा संभव है? यहां तो दूसरा कोई उपकार करता है तब भी धन्यवाद देने का नहीं मन होता, और एक व्यक्ति है जिसको कि ठोकर लग जाने के बाद भी उसके मुंह से निकलता धन्यवाद, ईश्वर को ऊपर हाथ जोड़ करके कहता कि धन्यवाद। वहां कोई बैठा नहीं है लेकिन हमको तो धन्यवाद देना है। तो लोग पूछते हैं कि इतनी चोट लगने के बाद धन्यवाद, वो कहता कि इससे ज्यादा लग सकती थी, कम में काम निकट गया, इस बात के लिए धन्यवाद, इस बात के लिए धन्यवाद। क्या ऐसी मानसिकता हमारी नहीं बन सकती? बन सकती है, बनाएं तो हम बन सकती है। पहले तो इतना ही कर लें कि दिन भर में जिनका हमारे ऊपर उपकार है उनको हम धन्यवाद दे सकें। भोजन करने बैठे हैं, क्या धन्यवाद से मन भर जाता है मां के प्रति या जिसने फूड हैंडल किया उसके प्रति? कभी नहीं भरता धन्यवाद से मन। मन तो उस भोजन से भी नहीं भरता, मन तो इस बात से भरता है कि ये ऐसी बनी है और ये ऐसी नहीं बनी है, और वहां होटल में इससे अच्छा बनता है। मन तो इससे भरता है, मन इससे नहीं भरता। भैया मैं तो इसी तरह की बात जानता हूं, पूजा पाठ तो सब कर लेते हैं, अभिषेक भी बहुत लोग करते हैं, स्वाध्याय भी बहुत लोग करते हैं, करते होंगे, जिंदगी निकल गई, लेकिन ये जो काम करने का था वो अभी तक अपन नहीं कर पाए हैं। वो काम अपन ने करे हैं सो बहुत धन्यवाद, पीठ अपने हाथ से थपथपाओ, लेकिन अभी ये काम करना भी बाकी है। जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करने का काम भी करना जरूरी है। दूसरों के उपकार को कदम कदम पर, ये बाजोटा जिसने बिछाया है आते ही साथ, सबसे पहले मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं पर आपको सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ये बाजोटा जिसने बिछाया है, ये पाटा जिसने लगाया है, आपको शायद नहीं मालूम मेरा इस पर बैठने के बाद जी कितना भर आता है, ये मैं जानता हूं। जब आप मुझे ताली बजा करके और गा करके और अपने यहां पर प्रवेश करके ला रहे थे तब मेरा मन कितना भर आया था, ये मैं जानता हूं। क्या कभी इसी तरह हमारा मन भर आता है छोटी छोटी चीजों के लिए कि लोग मेरे लिए कितना कर रहे हैं, कितनी गुड विशेस दे रहे हैं सुबह से शाम तक, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपको कोई तकलीफ ना हो। इससे ज्यादा कोई उपकार हो सकता किसी का? कुछ भी नहीं दिया किसी ने, दिखने वाली कोई चीज नहीं दी, लेकिन नई दिखने वाली चीजें लोग कितनी दे रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा इधर जगह आपको कम पड़ रही है और ऐसा खिसक गए हैं, मानिएगा कि दूसरे को आपके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उन्हीं क्षणों में कृतज्ञता से भर जाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था मन में कि अरे मेरे लिए आप खिसक गए, लेकिन ये होते ही नहीं है, सामने वालों को कहना पड़ता है कि खिसको जी, और ठीक इस अधिकार से कि जैसे मेरी जगह हो, तुमने कोई मेरे ऊपर उपकार नहीं किया, वो तो मैं मुझे बैठना ही था, तुम ज्यादा जगह बैठ गए। कितना मुश्किल है, इतनी छोटी सी चीज, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं, यहीं पर हम देख लें क्या इतना हम कर पाते हैं। दर्शन कर रहे हैं और कोई और आ जावे तो हम थोड़ा सा खिसक जाते हैं क्या, और हमारे खिसकने पर सामने वाला पूरे उसी धन्यवाद से भर जाता है क्या? नहीं हो पाता, अभी नहीं हो पा रहा। ये अभी तो ज्यादा से ज्यादा जगह दर्शन करने के लिए मुझे चाहिए। हटो वहां पर, बाजू से खड़े रहो, हम यहां से, हाँ हम दर्शन कर रहे हैं, तुम देखो हम कैसे दर्शन कर। नहीं भैया, नहीं, हम धर्म के क्षेत्र में चाहे कर्म के क्षेत्र में सब जगह लिखा तो है कि दस भी मुंडानम, अकेले केशों का मुंडन कर लेना मुंडन नहीं है, हाथ पैर का मुंडन और पांचों इंद्रियों का मुंडन, अपनी वचन प्रवृत्ति का मुंडन, सब चीजों का मुंडन, सब चीजों में विनय आनी चाहिए। हमारे शरीर तक में विनय, विनयवान शरीर अलग मालूम दिखाई पड़ने लगता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। विनयवान वाणी अलग दिखाई पड़ती है, विनयवान मन अलग दिखाई पड़ता है। कृतज्ञता से भरा हुआ अगर जीवन है तो आंखों में कृतज्ञता अलग दिखाई देने लगती है, कहीं छुपती नहीं है ये चीजें, चेहरे पर दिखाई देने लगती है। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक छोटी सी घटना और शायद अपना मन ऐसी कृतज्ञता से भर जाए और हमारे जीवन में ऐसा उपकार का भाव दूसरे के प्रति आ जावे तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ अपन उस घटना को सुने। मेरे जीवन की कुछ थोड़ी सी घटनाएं हैं जिनको कि मैं बहुत मुश्किल से कह पाता हूं, बहुत दिन से मन बनाते बनाते आज इस घटना को आपसे कह रहा हूं। कुल गिनी चुरी चार पांच घटनाएं हैं जिनको कि वर्षों में एकाध बार कभी मन बनता है सुनाने का। क्या हुआ? एक बहुत गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब था, गांव में रहता था, उसका जीवन ठीक से नहीं चल पाता था। उसने सोचा कि शहर में जाकर के नौकरी करे ताकि दो पैसे कमाए और घर ठीक से चल सके। अपने लिए तो खाने के लिए सब जुटा लेते हैं लेकिन परिवार के लिए तो थोड़ा जुटाना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है। और आता है वो शहर में, उसने शहर पहली बार देखा है, उसने शहर के लोग पहली बार देखे। एक सेठ की दुकान के सामने खड़ा होकर के सेठ से कहता है कि सेठ जी कोई काम मिलेगा क्या? भीख नहीं मांगी उसने, भीख मांग सकता था। सेठ जी तो उसको यही सोच करके बहुत हिराकत से देख रहे थे कि शायद भीख मांगेगा, लेकिन उसने काम मांगा। और सेठ जी से अगर कोई काम मांगे तो मालूम सेठ जी का मन क्या होता है? इससे झाड़ू लगवाऊं, झाड़ू। हां होता तो है, भले कोई कहे नहीं, हो सकता है कोई ऐसा सेठ हो जो दूसरे को भी सेठ बना दे, लेकिन अधिकांश सेठ तो यही चाहते हैं कि सब मेरी दुकान पर झाड़ू लगाएं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं। और मालूम उस सेठ ने जैसे ही पूछा कि सेठ जी कोई काम हो, क्या करेगा, झाड़ू लगाएगा क्या, ऐसे ही पूछ लिया, तो उसने कहा कि हुजूर यदि वो काम भी मिलेगा तो वो भी कर लूंगा, झाड़ू लगाने का काम भी कर लूंगा, आपकी कृपा। कृपा मान रहा है वो, उसकी भाषा बिल्कुल अलग ही है, और सेठ जी की भाषा ईगो सेंटर्ड होने की भाषा कौन सी है? अच्छा तो झाड़ू लगाएगा, ठीक है, कितना पैसा लेगा? जो आप दे देंगे हुजूर, देखना आप कैसे रिश्ता कायम हो रहा है। एक रिश्ता ऐसे काम कर रहा है कि जो आप दे देंगे, और दूसरा कह रहा है क्या लोगे, मैं तुम्हें सब दे सकता हूं। देने का अहंकार देखो और उसके मांगने की विनय देखो, क्या ऐसा है अपने जीवन में? बहुत मुश्किल है, ये तो कहानी है, कहानी को सच्चा मत मानना। ये सब नहीं होता, इन सब के दिन लद गए हैं, है ना। ये तो सिर्फ किस्सों कहानी की बातें हैं। नहीं भैया, जीवन की बातें हैं, जीवन की। ऐसे लोग भी हैं आज। और सचमुच में सेठ ने उसको अपने यहां पर झाड़ू लगाने का काम दे दिया। और मालूम क्या तय हुआ, अहंकार हमेशा तय करता है चीजों को, श्रद्धावान विनयवान तय नहीं करता, वो तो सिर्फ जो तय हो जाता है उसे स्वीकार कर लेता है। तय क्या हुआ कि जो 2 जून का भोजन और कपड़े और रहने के लिए वो जो बाहर का दालान है वो बस, और महीने भर में इतना ही मिलेगा। झाड़ू लगाने का काम दुकान में शुरू। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते सेठ ने देखा कि ये झाड़ू लगाने वाला जो नौकर है वो तो जो पर्चियां बाहर फेंकता है उनको पढ़ता भी है, इसका मतलब लगता है पढ़ा लिखा है। अहंकारी के सामने अगर कोई पढ़ा लिखा और सेठ जी के सामने कोई पढ़ा लिखा अगर दिखाई पड़ जाए तो सेठ जी के अहंकार को और ज्यादा ठेस पहुंचती है। हां, अहंकारी के सामने अगर कोई क्वालिटीज वाला व्यक्ति, कोई गुणवान व्यक्ति अगर हो तो अहंकारी के अहंकार को बहुत चोट पहुंचती है। अब ये अगर पढ़ा लिखा है तब तो बहुत मुश्किल है। सुनो, कब पढ़े लिखे हो? उसने कहा, हुजूर आपकी कृपा से थोड़ा बहुत हिसाब जानता हूं। अरे तुमने पहले नहीं बताया हिसाब किताब जानते हो, तो थोड़ा दुकान का हिसाब किताब पर्ची वगैरह भी बनाने का काम शुरू करो। उसने कहा, कर दूंगा हुजूर, वो भी कर दूंगा। क्या लोगे इसका? कुछ नहीं मालिक, जो आप देंगे तो बस ठीक है, जितना भी मिलता है उतने में ही, ठीक है ना। हाँ ठीक, यही है ना, यही है, अपन के साथ भी यही है। ये तो कहानी में है, अपन के साथ भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सेठ राजी है कि कोई हर्जा नहीं, पढ़ा लिखा है इससे ज्यादा अपन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जल्दी मान गया। ये तो दुकान का काम करेगा, हमेशा अपने मातहत ही रहेगा। और धीरे धीरे करके वो पढ़ा लिखा होने की वजह से अब काम तो उसका बढ़ना शुरू हो गया, वो तो रोकड़ बही करने लगा। लेकिन उसका कैडर तो वही झाड़ू लगाने वाला, भले ही अब झाड़ू लगाने के साथ साथ वो मुनीमगिरी का काम भी करता है, अकाउंटेंट भी बन गया है, लेकिन उसे अकाउंटेंट का कोई दर्जा नहीं है, उसे दर्जा झाड़ू लगाने वाले का ही है। हम लोगों के जीवन में भी यही है, हम सबको दर्जा वही देना चाहते हैं। और लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आया, अब उसको वो दालान वाली जगह से 2 कमरों वाली जगह जरूर मिल गई है। कोई उसके नाम से एफडी नहीं है, कोई उसको पगार नहीं मिलती है, बस 2 जून का भोजन, थोड़े कपड़े पहले से अच्छे मिलने लगे हैं, क्योंकि मुनीमी का काम करने वाला सेठ का नौकर थोड़े अच्छे कपड़े पहनने वाला होना चाहिए, इसलिए जरूरी है, वैसे नहीं, वैसे जरूरी है। क्योंकि इससे सेठ जी का स्टेटस बनता है, इसलिए उसको अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, इसलिए उसे अच्छे कपड़े पहनने मिलने लगा है। बाकी उसके प्रति अब, लेकिन मजा यह है कि सेठ जी का विश्वास तो धीरे धीरे उसके प्रति बढ़ रहा है कि आदमी ईमानदार है सीधा साधा। और चाहिए भी अपन को, हर एक को ऐसे ही व्यक्ति चाहिए, ईमानदार और सीधा साधा। हम कितने ईमानदार और कितने सीधे साधे हैं? नहीं, ये नहीं, दूसरे को ईमानदार और सीधा साधा होना चाहिए। अब देखना मजा, बाकी जो लोग उसके यहां काम करते हैं उनको होने लगी ईर्ष्या। जब जब भी गुणवत्ता बढ़ती है तब तब ईर्ष्या शुरू होती है, या कि अहंकार। अहंकार है एक्टिव और ईर्ष्या है पैसिव, बहुत हिडन, बहुत छुपी हुई अहंकार की वैरायटी है ईर्ष्या, और वो होना शुरू हुई। राजा के सेठ जी के कान भरे जाना शुरू हुए। ये जो आपका मुनीम जैसा झाड़ू लगाने वाला है ना, इससे आप संभल के रहना, ऐसा ना हो कि एक दिन आपके पूरे पैसे पर ये झाड़ू लगा करके निकल जाए। बहुत खतरा पैदा हो गया। गुणवान व्यक्ति अगर अपने पास आ जावे तो अपन को अब खतरा मालूम पड़ने लगता। देखो तो बुद्धू सुद्धू सा हो चलेगा, क्योंकि उसके सामने अपना काम आसानी से, उसको अपन चीट कर सकते हैं, उसको बुद्धू बना सकते हैं। अब उसको तो कुछ भी नहीं मालूम, वो तो फिर भी अपने सेठ जी के प्रति बहुत कृतज्ञ है, सेठ जी को बहुत उपकारी मानता है अपना, कि उनकी वजह से आज मैं इस स्थिति में हूं कि जरा ठीक से भोजन कर पाता हूं, अपने बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत भेज पाता हूं। और एक दिन जब सेठ जी का विश्वास, सैकड़ों बार कोई किसी से किसी के बारे में झूठी बात कहे तो एक आध बार तो विश्वास होने ही लगता है, 100 बार अगर किसी बात को झूठी बात को कहा जाए तो एक बार वो सच्ची मालूम पड़ने लगती। और सेठ जी को लगा कि हो ना हो ये हमारे पैसे को कहीं ना कहीं से इतना राजी क्यों है, इतने कम पर इतना राजी क्यों। अगर कोई दहेज नहीं मांगे अगर लड़का, तो लड़की वाले को लगने लगता कि इतनी जल्दी राजी क्यों है, कोई ना कोई खोट जरूर है। बड़ा मुश्किल है। कोई अगर विनयवान हो तो चालाकी मालूम पड़ती है, कोई अगर प्यार से बोले तो स्वार्थी मालूम पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल हो गया। कैसी मानसिकता, कैसे हमें अपना जीवन जीना पड़ रहा है, ऐसे हमने अपने जीवन को बना लिया है सबने, और सब एक दूसरे के साथ इसी तरह व्यवहार करते हुए और आराम से जी रहे हैं। धर्मात्मा मानने वाले अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, वैज्ञानिक अपने को वैज्ञानिक मान रहे हैं, सब अपने को बहुत ऊंचा मान रहे हैं, लेकिन जी उसी स्तर पर रहे हैं जिसकी अपन यहां बात कर रहे हैं, वही स्तर है, वही घटिया स्तर है। लेकिन लेबल बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं सबके ऊपर। अब क्या हुआ कि लोगों ने धीरे से जाके कहा कि सुनो, 2 कमरे आपने व्यर्थ में दे रखे हैं, 1 कमरे में वो सोता है खाना बनाता है, 2 कमरे में सारा कुछ इकट्ठा करके रखता जा रहा है। हां, और मालूम कंफर्म हो गया है, क्योंकि जब भी वो दुकान पर आता है ना, वो जो तुम्हारा झाड़ू लगाने वाला, जिसको तुमने अब अपना हिसाब किताब भी करवाना शुरू कर दिया है, किसी भी दिन चौपट कर देगा वो हिसाब किताब, वो जब दुकान पर आता है ना तो उस वाले कमरे में जरूर जाता है, और जब दुकान से लौटता है तब भी उस कमरे में जाता है। सारा दारोमदार, सारा मामला उसी कमरे में है, वो जो तुमने एक्स्ट्रा कमरा उसको दे रखा है। और सावधान हो जाओ, कितनी जल्दी विश्वास हो जाता है, सच्ची पर उतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, ऐसी झूठी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास। और सेठ जी को विश्वास हो गया, लोगों ने कहा कि सुनो, मौका देख करके हमला बोलना, रंगे हाथों पकड़ेंगे दूसरे को, हम ऐसे ही रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। हां, जैसे सब चोर हो ना, ऐसा लगता है सबको रंगे हाथों पकड़ेंगे। और कब, जबकि वो उस कमरे में भीतर गया और अब बस 5 मिनट बाद बाहर आके दुकान जाने वाला है, तब पहुंच गए सेठ जी उन 4 लोगों के साथ। वे 4 लोग और कोई नहीं है, हमारी अपनी कशाएं हैं, हम सेठ हैं अपने भीतर अगर देखा जाए, लेकिन जब ये चार लोग घेर लेते ना अपन को, तो अपन सेठ वेट नहीं रहते, फिर अपन पक्के संसारी हो जाते हैं। हाँ, और हो गए हैं। ले जाते हैं वो उन चारों लोग, सेठ जी खुलवाओ दरवाजा। खोलेगा नहीं वो, देख लेना, खोलेगा नहीं, जल्दी नहीं खोलेगा, सब संभाल लेगा तब खोलेगा। खटखटाया दरवाजा, खोलो। अब भीतर तो वो सक पका गया कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मैं तो सिर्फ 5 मिनट भीतर रुकता हूं, और आज इन 5 मिनट में मैं जैसे ही भीतर घुसा और दरवाजा खटखटाया और लगता है सेठ जी की आवाज और बहुत तेजी से कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो, इसी समय खोलते क्यों नहीं, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। समझ गया वो कि अब मेरे गांव लौटने का समय आ गया, मेरी कृतज्ञता आज भी ज्यों की त्यों है सेठ के प्रति, लेकिन सेठ का विश्वास मेरे प्रति अब उठ गया है, बात खत्म हो गई, रिश्ता इतना ही था। और धीरे से दरवाजा उसने खोला तो ऐसे झपट के घुसे सारे लोग जैसे कि कमरे में हीरे जवाहरात भरे होंगे, खुलते ही साथ दिखने लगेंगे, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ भी नहीं होते हुए भी एक छोटी सी संदूक जरूर रखी थी उस कॉर्नर पर। धीरे से इशारा किया सेठ जी को, देखो देखो वो रखी हुई है, घबराओ मत, हमने आपको इन्फॉर्मेशन सही दी थी, वो रखी हुई है, सब उसी में है, कीमती कीमती चीजें, सब कीमती सामान उसी में। सेठ जी ने कहा कि सुनो, उस संदूक में क्या है? ये पूछना ही इस बात का प्रतीक है कि संदेह है, और जहां संदेह है वहां अहंकार भी है, विश्वास और कृतज्ञता और विनय ये सब चीजें एक साथ रहती हैं, ये संदेह के साथ नहीं रहती। चाबी कहां है? चाबी लाओ। उसने कहा मालिक, मालिक आज चाबी की क्या जरूरत पड़ गई है? तुम चाबी देते हो कि नहीं देते? भाषा ज्यों की त्यों है, अहंकारी की भाषा अलग है, विनयवान की भाषा अलग है। वो मालिक कह रहा है और ये दुत्कारता जा रहा है, वो हाथ जोड़ता है कि मालिक चाबी भर मत मगाओ, और कम से कम उस संदूक की, तब तो संदेह और बढ़ जाता है। चाबी देते हो कि नहीं? मालिक चाबी ही क्या, मेरा पूरा जीवन आपको देता हूं, लेकिन संदूक मत खोलो। संदूक अगर आप खोल लेंगे तो फिर मैं आपके यहां से विदा ले लूंगा, आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। लेकिन ये बात तो और ज्यादा संदेह बढ़ाने वाली थी, ये बात सामने वाले की विनय प्रकट करने वाली नहीं लग रही थी, सामने वाले पर विश्वास करने वाली बात नहीं लग रही थी। और सेठ ने जब संदूक खोला तो सोचा तो ये था कि निकलेंगे हीरे जवाहरात, लेकिन निकला क्या था? एक फटा पुराना अगरखा, एक फटी पुरानी धोती और एक फटी सी पगड़ी, 3 चीजें इसमें थी। और वो गरीब हाथ जोड़े जो अपने मालिक का दिया हुआ खाता है, जो अपने मालिक का दिया हुआ पहनता है, वो खड़ा हुआ है हाथ जोड़े, और तीनों चीजें सेठ के हाथ में हैं। ये क्या है? मालिक ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है, जब जब भी आपकी दुकान पर जाता हूं और दुकान से वापस लौट के आता हूं, तब तब एक बार इन तीनों चीजों को टटोल के जरूर देखता हूं, क्योंकि ये तीनों चीजों पहन करके मैं आपके यहां आया था और वहां से आपकी कृपा से इतने ऊपर पहुंच गया हूं, कहीं मुझे इस बात का अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं इन तीनों चीजों को संभाल के रखे हूं। मेरी अपनी औकात तो इतनी ही है, बाकी सब आपका दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। काश ऐसा ही अपने जीवन में, अपने मन में आता कि जो कुछ भी यहां हमने पाया है वो लोगों की कृपा से पाया है, उनके उपकार से पाया है। हम तो क्या लेके आए थे, दोनों मुट्ठियां बांधे थे, बोलते तक नहीं बनता था, अपना काम अपने हाथ से करते नहीं बनता था, और आज किस बात का अहंकार कर रहे हैं। क्या चीज थी हमारे पास? तीन ही चीजें हैं हमारे पास जिनका अहंकार करना चाहें तो कर सकते हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण लेके आए थे, उस फैमिली में पैदा हुए थे जिसमें कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण मिली थी, और भूल गए हम उस फैमिली का उपकार, भूल गए जिसमें कि हमें ये संस्कार मिले थे। तीन ही चीजें मिली थी सच्चे देव गुरु शास्त्र, और उनने हमेशा हमें अहंकारी होना नहीं सिखाया, विनयवान होना सिखाया। काश वे तीन चीजें हमेशा हमें याद में बनी रहती कि विरासत में ये मिली हैं। क्या हमने अपनी इस विरासत को आज भी बचा करके रखा है? अगर ये तीन चीजें, इनके प्रति विनय, इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति कृतज्ञता हमारी बनी रही तो हमारा जीवन जरूर से ऊंचा उठेगा। कोई वजह नहीं है कि ऊंचा ना उठे। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में इस विनय को, इस श्रद्धा को, इस कृतज्ञता को और इस उपकार की भावना को हमेशा बनाए रखें ताकि अपना जीवन ऊंचा उठ सके। आज एक साथ बैठ करके फिर इसी भावना से नमोकार करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने।